जय माँ। हम लोग बहुत ही सुंदर कैंटो है कि जो आने वाले बीइंग्स होंगे, जो हायर कॉन्शियसनेस के बीइंग्स होंगे, वो कैसे होंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे महसूस करेंगे चीज़ों को, कैसे देखेंगे, तो उसी का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसका जो प्रथम भाग है इग्नोरेंस से मुक्ति, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे इस ज्ञान का विस्तार होता है, तो एक है कि सार तत्व में ज्ञान का प्रकट होना, ज्ञान चक्षु का खुलना, और फिर धीरे धीरे उसका विस्तार होना। तो उसका जैसे जैसे विस्तार होता है तो क्या क्या अद्भुत चीज़ें चेतना के अंदर प्रकट होती हैं, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे हम लोग, पेज नंबर 41। अब ये ज्ञान का विस्तार होते होते कहाँ ले जाता है अश्वपति को, वो हम पढ़ें। चौथी लाइन ऊपर से 41 नंबर, द ओरिजिनल डिजायर बॉर्न इन द वॉइड पियर्ड आउट, ही सॉ द होप दैट नेवर स्लीप्स। एक चीज तो होती है उच्चतर चेतना के साथ साथ, अभी मैं उच्चतर चेतना की बात करके आ रहा हूं, इसलिए ये आदमी कभी निराश नहीं हो सकता। भगवान की उस पर छाप पड़ी है, इसका चिन्ह ये होता है कि वो कभी निराश नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर वो श्रद्धा का जो दिया जलता है वो पूरा सूर्य से ही उसकी डायरेक्ट कनेक्शन है, वो सोलर लाइट जलने लगती है अंदर में, वो चाहे दिया ही क्यों ना हो। तो वो होप दैट नेवर डाइज, ओरिजिनल डिजायर, ये क्या है इन द वॉइड, शून्य के अंदर, क्योंकि ये ऋग्वेद में ये कहा गया है कि वो डिजायर जो उस शून्य महाशून्य के अंदर प्रकट होती है। तो कई लोग इस डिजायर को लिटरली डिजायर समझते हैं, लेकिन डिजायर क्या है, एको हम बहुश्याम, डिजायर क्या है कि भगवान अपने ही जैसे ये सारी सृष्टि में, या ये कहें कि स्वयं को ही देख रहे हैं, और उसमें वो अनेकों अनेकों नाम रूप जिसको भी वो देखते हैं वो उनके जैसा बनने लगता है, क्योंकि ये उसकी नियति ही है। तो सच तो ये है कि भगवान सृष्टि के अंदर भी हैं और सृष्टि को देख भी रहे हैं, इसलिए सृष्टि की नियति तो केवल एक ही है, दिव्य बनेगी, आज बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी, एक जन्म बाद, हजार साल बाद, 10,000 साल बाद, व्हाट डज इट मैटर, बनेगी। और यदि हमारे अंदर ये आशा और उत्साह रहे तो उतनी जल्दी बनेगी, और यदि हम निराश हो के अरे हमारे तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे पड़ोसी तो वैसे ही हैं, हमेशा पड़ोसी तो प्रॉब्लमेटिक होते हैं या मैं और घर के लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ पड़ोसी ही, तो हम दूर कर रहे हैं उसको, बनेगी, ओरिजिनल डिजायर, होप दैट नेवर डाइज। क्यों ये होप कभी नेवर स्लीप्स, ये क्यों नहीं, आशा कभी भी नहीं सो पाती है या कभी भी धूमिल नहीं होती है, क्योंकि वो उस आशा का पोषण स्वयं भगवान कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं धूमिल पड़ने देगी। The original desire born in the void peered out. He saw the hope that never sleeps. The feet that run behind a fleeting fate. The ineffable meaning of the endless dream. क्या क्या प्रकट होने लगता है? अब देखिए दो विचारधाराएं, एक है कि संसार में सब ट्रांजिएंट है, सब फ्लीटिंग है, कुछ भी नहीं आता, तो ये संसार ही व्यर्थ है, ये सारा एक दुस्वप्न है, इससे बाहर निकल जाना। लेकिन ये जो ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान आता है जिसमें विस्तार होता है जैसे जैसे, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो शायद मिले ना मिले फ्लीटिंग फेट, उसके पीछे भी जो प्रकृति भागती है या मनुष्य भागता है, उसमें भी एक प्रयोजन है। इसीलिए हम कितना भी कह लें कि ये संसार तो माया है, दिखता है ना, लोग सुनने जाते हैं, सत्संग सुन के आते हैं, तो संसार सब मोह माया है, बाहर आके पूछते हैं तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, कितना उसको सैलरी बढ़ी है, ये आपको, क्योंकि ये ले जा रही है कहीं पर, भगा भगा के ले जा रही है हर बार। श्री कृष्ण का यही आनंद है या प्रॉब्लम कह लें कि वो गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं, पहले वो ये गोल पोस्ट, फिर आप जब उसके पास पर मिलने वाला है, और अगर आपको मिल भी गया तो वो हाथ से गायब हो जाएगा फिर वो आगे आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्यों वो कर रहे हैं गोल पोस्ट शिफ्ट, लोग बड़े परेशान होते हैं कि ये क्या खेल खेल रहे हो हमसे। भाई अगर वो सीधा कहेंगे कि देखो तुमको हिमालय की चोटी चढ़नी है, हम लोग चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे, तो पहले कहते हैं नैनीताल आ जाओ, मधुबन आ जाओ. हम मधुबन जाके बड़े खुश हो रहे हैं नैनीताल, फिर वो लगता है नहीं नहीं पूरा मजा है नहीं, क्योंकि वहां से आपने देख ली वो एक और चोटी है, अब वो चोटी पे पहुंचना है. तो अब आपके अंदर थोड़ा थोड़ा करके साहस हो रहा है कि मैं चढ़ सकता हूँ 6,000 से 10,000 वाली चोटी. वहां गए तो कहते इसके आगे क्या है, अब आप 12,000, अगर सीधा बोलेंगे 30,000 तो हम चढ़ेंगे ही नहीं. तो फीट, द फीट दैट रन बिहाइंड ए फ्लीटिंग फेट, मिला और नहीं मिला, फ्लीटिंग फेट, द इनएफेबल मीनिंग ऑफ द एंडलेस ड्रीम, वो उसका अर्थ है, इस संसार का अर्थ है, ड्रीम का ये स्वप्न है, सच है एक दृष्टि में, लेकिन स्वप्न देख कौन रहा है, एकमात्र दृष्टा भगवान देख रहे हैं. और ये चूंकि ये भगवान का स्वप्न है इसके अंदर अर्थ भी है. ये सब प्रकट होने लगता है अशुपति को और उन सब को जो इस चेतना से जुड़ते जाते हैं. हार्डली फॉर ए मोमेंट ग्लिम्स्ड व्यूलेस टू माइंड एज इफ ए टॉर्च हेल्ड बाय ए पावर ऑफ गॉड द रेडिएंट वर्ल्ड ऑफ द एवरलास्टिंग ट्रूथ ग्लिमर्ड लाइक ए फेंट स्टार बॉर्डरिंग द नाइट अबव द गोल्डन ओवर माइंड्स शिमरिंग एज. आप देखिए इसको अगर इंग्लिश को हिंदी में करने से थोड़ा लगता है क्या बता रहे हैं शेर, देखिए इसकी एक इमेज है, बड़ी सुंदर इमेज है. सोचिए कि रात है नीचे और अचानक आप दूर कहीं सूर्योदय हो रहा है पहाड़ों के पीछे से, पहाड़ों के पीछे से सूर्योदय होते देखा है या चंद्रोदय, तो पूरी वैली एक साथ नहीं प्रकाशित होती है, ऐसे नहीं होता कि डॉन हुआ तो सबके ऊपर, चारों तरफ वो पर्वत हैं और आप यहाँ अंधकार में हैं और वह उसके थोड़ा सा सूर्य निकल रहा है. तो वो जो भाव होता है कि शिमरिंग एज, कि इसके परे अभी सूर्य है, अभी ये सब प्रकाशित होगा लेकिन अभी अंधकार है. तो एज इफ ए टॉर्च, मानो अचानक वो टॉर्च कौन सी है, फेथ की टॉर्च है, उससे ये प्रतीति हो जाती है कि ईश्वर हैं, सर्वत्र हैं, दिखते नहीं, ये हमारी समस्या है. तो वो अपने आप ये चीज जागृत हो जाती, ओवर माइंड शिमरिंग एज, उसके परे, क्योंकि ओवर माइंड के नीचे तो ये है कि यहाँ पर हैं, वहाँ नहीं है, अभी हैं, अभी नहीं है, पर सुपर माइंड में सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं. तो ये भाव प्रारंभ होता है, ये सत्य प्रकट होने लगता है. द रेडियंट वर्ल्ड ऑफ द एवर लास्टिंग ट्रूथ सुपर माइंड है, ग्लिमर्ड लाइक ए फेंट स्टार बॉर्डरिंग द नाइट अबव द गोल्डन ओवर माइंड शिमरिंग एज, उसके परे वो परिलक्षित होने लगता है. इवन, आह क्या पंक्ति है, इवन वेयर कॉट एज थ्रू ए कनिंग्स वेल द स्माइल ऑफ लव That sanctions the long game. देखिए कृष्ण जी का वर्णन हो रहा है, कनिंग वेल. अब कनिंग क्यों कह रहे हैं श्री अरविंद, वो छिपाता भी है दिखाता भी है, आकर्षित भी करता है लेकिन वो आप हटा नहीं पा रहे तो आपको परेशान भी कर रहा है, कनिंग वेल. और उसके पीछे किसका सैंक्शन है, इस सृष्टि के प्रति भागना चाहते हैं हम, उन्हीं कन्हैया का, डिवाइन का, जो स्माइल दैट सैंक्शंस. आप कहेंगे ये इतना विकट खेल, महाभारत आपने सैंक्शन किया था, श्री कृष्ण क्या उत्तर देंगे, हाँ क्यों, मैं नया जीवन प्रकट करना चाहता हूँ, राष्ट्र को स्थापित करना चाहता हूँ. और उनका क्या, जो मर गए आएंगे कौरव पांडव, मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में आएंगे. ये वैसे भविष्य पुराण में इसका प्रोफेसी भी है, अब मैं आगे नाम नहीं बताऊंगा कौन कौन क्या है. नहीं अभी नाम नहीं बताऊंगा. तो आएंगे वो, ये प्रोसेस है, हम फॉर्म्स को देखते हैं कि एक जन्म में एक व्यक्ति का क्या हुआ, लेकिन यदि हम लार्जर पिक्चर को देखें, कंटेक्स्ट देखें, तो क्यों सैंक्शन किया. आज आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति धरा पर पड़ा हुआ है तो वो तो व्यर्थ गया उसका जीवन, लेकिन यदि आप भगवान की दृष्टि में देखेंगे तो कहेंगे इस जीवन में मैं उसकी केवल तैयारी करवा रहा हूं, एक बार तैयार होगा तो ये ऐसा भागेगा कि सबको पीछे छोड़ देगा, इस जन्म में ना जाने कौन से जन्म में, ये एक्चुअल स्टोरी है. आश्रम में एक गधा होता था, मतलब गधे हम सब हैं, उस फिगरेटिव गधा नहीं, वास्तव में गधा होता था। तो उसको माँ ने देख करके सिलेक्ट किया था उस गधे को। अब सोचिए माँ ने सिलेक्ट, कई बार यही लगता है कि जिसको भगवान ने सिलेक्ट किया। तो इस गधे का नाम था बोडो, और वो काम वाम कुछ करेगा नहीं। जैसे ही वो आया माँ ने कहा इसको खरीद लो, तो ले लिया उन्होंने धोबी से। अब वो धोबी क्या तो काम करता था, यहाँ काम ही नहीं करे। तो शेरविंद को जब ये बताया गया ये गधा कुछ काम वाम नहीं करता है, तो शेरविंद ने हंसते हुए कहा, मतलब अंडर इज ब्रेथ उनका हंसना, टिपिकल साधक, तो ये काम नहीं करेगा लेकिन खाएगा, मौज करेगा, डाइनिंग रूम, स्पोर्ट्स ग्राउंड ये सब लेगा, लेकिन वो काम अब नहीं करेगा। तो अब ये गधा एक रेस में दौड़ा, ये सच्ची कहानी है, रेस में गधा दौड़ा। तो सब बड़े आश्रमाइट चले गए चेयर करने। अब कहाँ आश्रमाइट की चेयर, और यहाँ लोकल पॉपुलेशन की चेयर। अब वो आए, गधों की रेस हो रही है, अब रेस शुरू हुई। बोडो खड़ा हुआ है, उसकी आदत ही नहीं है भागने की, खड़ा है रेस में 2 मिनट 3 मिनट। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कितना भी उसको कह रहे हैं। अचानक किसी के दिमाग में एक बहुत ब्रेन वेव आई, उसने जोर से माँ का आह्वान किया, और वो आह्वान करके कहा बोडो रन। वो ऐसा भागा कि वो फर्स्ट आया रेस में। ये रियल स्टोरी आपको बता रहा। तो ये बड़ी ऐसे यही है, आप अगर देखें जीवन में जो कई लोगों की पास्ट लाइफ अगर देखें, जिनका कन्फर्म पास्ट लाइफ है, जिनके बारे में स्वयं शेरविंद माता जी ने बताया कितनी पीड़ा से वो गुजरे होंगे। इवन जैसे हम जानते हैं अमृता की, दिलीप कुमार रॉय की, एक उस समय की पीड़ा क्या, जब शेरविंद से अगर पता चले आपको कि अच्छा वो सारी पीड़ा मैंने इसलिए सही थी कि ये आनंद मिलेगा इनसे मिलने का, तो आप क्या कहेंगे, ओ इट वॉज ऑल वर्थ इट। लेकिन ये ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम सोचते हैं कि भगवान हमें क्यों ले जा रहा है, वाई ही हैज सैंक्शनड दिस गेम। स्माइल, स्माइल क्या है उनकी, बच्चों मेरे पास आ रहे तो, और हम कह रहे हैं प्रभु अंधकार अंधकार, सब छूट गए, संगी साथी जो एक भरोसा था वो भी तोड़ दिया। भगवान कह रहे हैं हाँ मैं कुछ सिखा रहा हूं, सीखेगा नहीं इतने में, वो कहता है शुरू में हाँ मैं सीखूंगा, आई वॉन्ट टू लर्न, इतने में कोई और पकड़ लेता है, कहता हाँ हाँ मुझे मिल गया। तो भगवान कहते ओहो तुझे फिर अंधकार से गुजरना पड़ेगा। तब अंत में आता एक समय जब कहते ओ ये मुस्कान है जिसके लिए मैं दुनिया भर की मुस्कानें ढूंढ रहा था। यही तो है ना हेलन का जो वर्णन है, डिवाइन मदर पे सटीक बैठता है, द फेस दैट लॉन्च द 1000 ships। तो ये सारा स्माइल दैट सैंक्शंस, इसीलिए कनिंग वेल, क्यों छिपाया उन्होंने अपने आप को, सीधा क्यों नहीं उजागर किया, अरे भाई हम तैयार नहीं है। आप बच्चे को अगर बोलोगे तुमको इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन, देखिए हम लोग के क्लास में भी एलजेब्रा में क्या शुरू होता था, a+b = whatever, ऐसे सीधा ट्रिग्नोमेट्री की वो कॉम्प्लेक्स, हम लोग कहेंगे हमें नहीं पढ़ना एलजेब्रा वगैरह। तो धीरे धीरे हमारी तैयारी होती है, नहीं तो खेल बिगड़ सकता है। तैयार करते हैं भगवान हमको धीरे धीरे। तो यहां उसका वर्णन है, द स्माइल ऑफ लव दैट सैंक्शंस द लॉन्ग गेम, द काम इंडल्जेंस एंड मैटरनल ब्रेस्ट। लेकिन कठिनाई के साथ साथ क्या चलता है, मैटरनल ब्रेस्ट, बीच बीच में माँ की पुचकार, वही माँ जो हमको कभी कभी थप्पड़ भी लगाती हैं रास्ते पर चल, तो वही माँ फिर पुचकारती भी है, काम इंडल्जेंस, वही हमारी इच्छाएं भी पूर्ति करती हैं। तो इसका भी अनुभव पूरा एक समग्र दृष्टि में दिखाई देने लगता है, ऑफ विजडम सकलिंग द चाइल्ड लाफ्टर ऑफ चांस। क्या विजडम है, चांस लगता है ये क्या हो गया हमारे जीवन में, सब बर्बाद हो गया, विजडम है उसके पीछे। तो यहां पर उसका वर्णन है चाइल्ड लाफ्टर, वह जिसको अहंकार हमारा बहुत पीड़ित होता है, हमारी सोल उसमें प्रफुल्लित होती है कि हे प्रभु तुमने बचा दिया मुझे, नहीं तो मैं भी यही सब पता नहीं एक महल दुमहला बना करके उसमें कैद रहता, आपने मुझे इस कैद से मुक्त कर दिया। तो ये सारे चीजें ज्ञात होने लगती हैं, साइलेंस द नर्स ऑफ द ऑलमाइटी पावर, ये बहुत आवश्यक है, क्वाइट्यूड साइलेंस, इन क्षणों के बिना शक्ति अंदर नहीं आ सकती है। एक रेस्टलेस व्यक्ति कभी भी शक्ति को संवरण नहीं कर सकता। हर किसी को जीवन में कुछ क्षण कम से कम साइलेंस में बैठ के, नीरवता में बैठ के माता जी का आवाहन करना चाहिए। The omniscient hush womb of the immortal word। अब वहां से जो शब्द निकलता है, कौन सा शब्द है? सृष्टि के सारे शब्द उसके अंदर समा जाए, वो जो प्रथम नाद है। यहां शब्द कोई इंग्लिश और हिंदी का शब्द नहीं है, वो नाद है स्वर के रूप में, स्वीकृति के रूप में। और जैसे ही वो शब्द प्रकट होता है साधक के अंदर, जो चेतना के अंदर, वो अनेकों अनेकों रूप ले लेगा, आइडियाज, थॉट्स, अनेकों अनेकों रूप। तो वो सब अब अशुपति की झोली में आ रहा है। एंड ऑफ द टाइमलेस द स्टिल ब्रूडिंग फेस एंड द क्रिएटिव आई ऑफ इटर्निटी। देखिए ये सब शब्द कितने सुंदर हैं, टाइमलेस का और इटर्निटी, ये दोनों चीजें बता रहे हैं। टाइमलेस स्टिल ब्रूडिंग फेस, इटर्निटी इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, कालातीत है, टाइमलेस है। टाइमलेस है जिसमें जो कालातीत अवस्था है, जिसमें काल की गति रुक गई है, काल जिसमें बंद गया है, जाकर स्थापित हो गया है जाके, महाकाल और उनका चेहरे का ग्लिम्स, और उसके ऊपर क्या है उसके अंदर छिपा हुआ, इटर्निटी। तो अगर मैं इसको एक रियल एक्सपीरियंस से करूं तो टाइमलेस फेस किसका है? श्री अरविंद का। उसके पीछे कौन छिपा है? इटर्निटी। और यहां पर उसका सुंदर सा वर्णन है, एंड ऑफ द टाइमलेस द स्टिल ब्रूडिंग फेस, वहां तक नाम रूप, क्योंकि आप दृष्टि की सीमा एक स्पेस टाइम के अंदर, हालांकि वो टाइमलेस है, वो क्षण है, लेकिन वो क्षण उसके अंदर तीनों के तीनों काल की गतियां स्थापित हो गई हैं, लेकिन उसके परे है इटर्नल। तो वहां कह रहे हैं एंड द क्रिएटिव आई ऑफ इटर्निटी, वो जो अब सारे संसार को देख रही है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु नालिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषा, सबको ऊर्जा दे रहा है, अपनी आंखों से सब चीज को बदल रहा है अपनी दृष्टि से। अब आगे क्या होता है, वो एक शेर याद आता है, क्या क्या हुआ हंगामे यकीन ये नहीं मालूम। क्या क्या होता है? द इंस्पायरिंग गॉडेस एंटर्ड इमॉर्टल्स ब्रेस्ट। तो पहले तो अशुपति को इंस्पिरेशन आ रही है, प्रेरणा आ रही है, रिविलेशन आ रहे हैं, मोमेंट्स होते हैं जब फ्लैशेज आती हैं। अब वह देवी कौन है? इंस्पायरिंग गॉडेस, अब महामाया स्वयं उनके हृदय के अंदर विराजमान हो गई हैं। डिवाइन मदर ने अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट में उस व्यक्ति को अपना घर बना लिया उस व्यक्ति के अंदर। तब क्या होता है? द इंस्पायरिंग गॉडेस एंटर्ड इमॉर्टल्स ब्रेस्ट made there her study of divining thought and sanctuary of prophetic speech and sat upon the tripod seat of mind, all was made wide above, all lit below। तो व्यक्ति के अंदर prophet, seer, ऋषि, दूरदर्शी, ये सब अपने आप जाग जाता है, क्योंकि अब वो जो भी कहेगा उसकी स्पीच prophet, इसीलिए कहते हैं ऋषियों की वाणी, सच्चे ऋषियों की, दाढ़ी वाले ऋषियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सच्चे ऋषियों की वाणी वो कहीं ना कहीं वो होगी होगी, क्योंकि वो नहीं बोल रहे हैं उनके अंदर। कभी कभी कहते हैं जीवा में सरस्वती बैठ गई, लेकिन जब हृदय के अंदर सरस्वती बैठ गई तो फिर क्या होगा? वो तो हृदय तो संचालन करता है, तो आप वो कहोगे जो सच होगा और सच ही आपके मुख से निकलेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि ऋषियों की वाणी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसी ऐसी कभी कभी ऐसी चीजें बोल देते जो लोगों को, अगर हम अपनी कथाओं को पढ़ें, अरे ये क्या बोल गए, लेकिन वो सच होती है, उसके पीछे एक सत्य है, उसके पीछे एक विजडम है जो ऑपरेट कर रही है। इसीलिए ऋषियों का श्राप भी वरदान होता है। तो यहां पर उसका वर्णन है कि जब वो अंदर बैठ जाती हैं, सेट अपॉन द ट्राइपॉड सीट ऑफ माइंड, ट्राइपॉड सीट कौन सी है? मन के जो, ये जो तीन प्रकार के फिजिकल, वाइटल और मेंटल माइंड है जिसको हम जानते हैं, उसके परे है, इसके ऊपर वो बैठ गई है। और ये ट्राइपॉड सीट, वैसे डेल्फी का भी वर्णन है इसमें, डेल्फी जो गॉडेस है, वहाँ जो प्रीस्ट होता था, ये एक्चुअली ग्रीक मिथोलॉजी से जुड़ी हुई है ये। तो वहाँ पर एक ग्रीस में मंदिर है, अब तो मैंने पूछा कि अभी भी होती है वहाँ प्रोफेसी, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होता। तो उस मंदिर में जो प्रीस्ट होता था, कभी कभी एक दिन होता था विशेष दिन, जिस दिन उसके अंदर जो देवी हैं डेल्फी गॉडेस उसके अंदर बैठ जाती थी, कहते हैं जिसको हम लोग माता आ जाना, हम लोग जिसको कहते हैं वो तो एक शुद्ध प्राण की देव शक्तियाँ होती हैं, देवी देवता भी नहीं, लेकिन उस दिन वो जो भी कहती थी, वो प्रीस्टेस कहती थी या प्रीस्ट कहता था, वो सच होता था। मतलब उसको कोई प्रश्न नहीं करता था, उसको निर्विवाद सत्य माना जाता था। इस पर कहानी भी है सोक्रेटिस की। तो ट्राइपॉड सीट, तो वो ट्राइपॉड सीट पर बैठती थी जो सिंबॉलिकली, और तब क्या होता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है, जो ऊपर है छिपा हुआ होने वाला है, हजार साल आगे की घटना दिखाई देने लगेगी, सुपरमेंटल बींग्स होंगे, कैसे घूम रहे होंगे, वो कैसी दृष्टि डालेंगे मनुष्य के ऊपर, बहुत करुणा वाली भी दृष्टि होगी, और कि भाई ये कितने क्रूर थे, हम लोग समझते हैं हम बड़े महान हैं, कि इतने क्रूर थे ये, चाकू लेके सर्जरी करते थे, ऐसी सी चीजें करते थे, जब देखेंगे। और नीचे जो कुछ है, प्राण जगत, पेड़ पौधे पशु पक्षी, सब पर एक नई दृष्टि से दिखाई देगा। क्या देखेंगे वो पशु के अंदर, उसके अंदर वो देखेंगे कि इसके अंदर मनुष्यत्व जाग रहा है, और मनुष्य के अंदर इसके अंदर दिव्यत्व की यात्रा पर है। तो अपने आप वो चीजें प्रकट होने लगती हैं। ऑन द अनडिस्कवर्ड डेप्थ्स इम्पोज्ड ए फॉर्म लेंट ए वाइब्रेंट क्राई टू द अनअटर्ड वास्ट, वे सत्य गहराई में जो छिपे हैं, जो विस्तार में छिपे हैं, जिनको कोई वाणी मुखरित नहीं कर सकती, कोई वाणी प्रकट नहीं कर सकती, वे सारी चीजों को प्रकट करने की क्षमता वाणी के माध्यम से अष्टपति के अंदर आ जाती है। हम देखते हैं श्री अरविंद के साथ कि परस्यूट ऑफ द अनोएबल, जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, पर ब्रह्मन श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अरे उसको हाहा करे गिरे पड़े, काली माता के बारे में बता सकते हो, लेकिन उसके बारे में क्या बता सकते हो। श्री अरविंद पूरा एक कैंटो लिखते हैं पर ब्रह्मन पर, उनकी एक कविता है। तो कैसे लिखते हैं पर ब्रह्मन को अपने अंदाज में, बोथ टाइम एंड टाइमलेसनेस सिंक इन दैट सी, टाइम बिकम्स ए वेव स्पेस ए वांडरिंग ड्रॉप। आप देखिए, आप पर ब्रह्मन को नहीं बता सकते हैं, ये कहा गया है स्पिरिचुअल लिटरेचर में, बट अगर आप श्री अरविंद को पढ़े लगता है ये तो उस विस्तार और उस गहराई को सत्य शब्द दे रहे हैं जिसके बारे में तो कहा गया था कोई नहीं बता सकता, और एकदम परफेक्शन से बता रहे हैं जगह जगह पर। तो लेंट ए वाइब्रेंट क्राई टू द अनअटर्ड वास्ट एंड थ्रू ग्रेट शोरलेस वॉइसलेस स्टारलेस ब्रेथ्स बोर अर्थवर्ड फ्रैगमेंट्स ऑफ रिवीलिंग थॉट यून फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द इनएफेबल। कहां से वह प्रेरणा और सत्य को पा रहे हैं, शोरलेस, उस पार। उस पार क्या है, सुपर माइंड, कौन उसके बारे में बोल सकता है। तो वो जो एक सुदूर तारा नक्षत्र प्रकाश बन के आता है ना, उसका प्रकाश आ रहा है तभी हम देख पा रहे हैं, ये थोड़ी कि हमारे आंख से कोई लाइट जा रही है देख रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रकाश मोटिवेट करता है आंखों को फंक्शन करने के लिए, इट्स ऑल्सो यूजफुल इन थेरेपीज ऑफ द आई। तो प्रकाश स्टिमुलेट्स इट टू फंक्शन, ध्वनि स्टिमुलेट करती है कानों के अंदर, इंद्रों को मन को जगाती है। तो अगर आप सूर्य को तो देखें तो समझ आता है कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन सूर्य से ज्यादा नजदीक तो वीनस है, और वीनस कभी कभी प्रकट भी होता है आकाश में, लेकिन वो कैसे आ रहा है वो दिखाई नहीं देता है। तो यहां उसका वर्णन है कि वो जो रेडियंस, वो जो वहां से जो प्रकाश आ रहा है, वो सब अष्टपति रिसीव कर रहे हैं, सुदूर तारे नक्षत्रों से भी। वे सुदूर तारे नक्षत्र कौन हैं, सब कुछ है, उच्चतर देवता हैं, उसके परे सुपर सुपरमेंटल गॉड हेड्स हैं, सब हैं, जो उस नीरव क्षेत्र से आ रहे हैं, इनएफेबल, जिसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। वे अभिव्यक्ति पा रहे थे अष्टपति के अंदर, ए वॉइस इन द हार्ट अटर्ड द अनस्पोकन नेम। वो नाम जो इटर्निटी की फाउंडेशन है, इसको आज तक किसी ने नहीं कहा, वह नाम प्रकट हो रहा है। हम लोगों के लिए तो वो माँ श्री अरविंद है, तो वो नाम प्रकट हो रहा है। चूंकि श्री अरविंद और माँ ने उसको जानते हैं, अब ये कई बार कहते हैं ना कि जो डिवाइन बींग्स हैं उनके नाम का क्या महत्व है, तो चूंकि उन्होंने उस नाम को जो सृष्टि का आधार है उसके साथ तादात्म्य कर लिया है, तो अब उनका ये लौकिक नाम उस नाम के साथ जुड़ जाता है। तो आप उनके नाम के जरिए उस अनाम नाम को स्पर्श कर सकते हैं। ये उसका श्री अरबिंदो नामे आनंदो, क्योंकि वो अनाम अनस्पोकन नेम, वो कौन सा नाम है। हम लोग नाम से वर्ड ढूंढते हैं ना, पर कोई कोई ऐसे नाम होते हैं, दृश्य होते हैं, जिनको आप नाम नहीं दे सकते पर कुछ है, और उसको वो रिसीव करते हैं। इसीलिए आप श्री अरविंद के बारे में तो स्पष्ट रूप से माँ ने कहा, शोरबिंदु इज द फुल नेम, आप कट करके नहीं कर सकते हो, भगवान का नाम है। द्रौपदी श्री कृष्ण का नाम, तो ये जो अवतार होते हैं जो नाम को प्राप्त कर सकते हैं, उनका नाम भी अपने आप में उस अनाम को संबोधित करने लगता है। ए ड्रीम ऑफ सीकिंग थॉट वंडरिंग थ्रू स्पेस एंटर्ड द इनविजिबल एंड फॉरबिडन हाउस, द ट्रेजर वॉज फाउंड ऑफ ए सुपरनल डे। फॉरबिडन हाउस कौन सा है? सुपर माइंड। आप वहां ईगो के लेश मात्र के साथ नहीं प्रवेश कर सकते, भस्म हो जाएंगे। मामा खेपा की कहानी है ना, वही कि मैंने उनको श्री अरविंद को वहां जाते देखा जहां पर कोई नहीं जा सकता। आप क्लिम्स कर सकते हो दूर से, अच्छा ये है, आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, फॉरबिडन है। आप वहां जाओगे तो उस परम प्रकाश के अंदर विलीन हो जाओगे। तो यहां वो श्री अरविंद अशुपति वहां प्रवेश करते हैं। एंटर द इनविजिबल एंड फॉरबिडन हाउस, द ट्रेजर वॉज फाउंड ऑफ ए सुपरनल डे, और उसमें जो कुछ छिपा हुआ है वो सब वो धरती के लिए लाएंगे, पर अभी वो उसको देख रहे हैं। अब केवल ऊपर नहीं, क्योंकि ऑल वॉज लिट वाइड अबव, ऑल लिट बिलो। अब नीचे क्या छिपा है? नीचे कोई छिपी है चीज है, नीचे भी कोई ऐसी सत्य है। इन द डीप सबकॉन्शियस ग्लोड हर ज्वेल लैम्प, लिफ्टेड इट शोड द रिचेज ऑफ द केव, वेयर बाय द माइजर ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस अनयूज्ड, guarded beneath night's dragon paws, in folds of velvet darkness draped they sleep, whose priceless value could have saved the world. सीधा सीधा वेदों की एक कहानी है इसमें, कि ये सारे जो रॉबर्स हैं, जो ये दस्यु हैं, जो चुरा करके हमारे अंदर भगवान के आनंद को, अमृत तत्व को छिपा देते हैं गुफा के अंदर, और वो हमको क्या देते हैं? उसका डिस्टॉर्ट करके उसका एक छटाक भर, लेकिन छिपा के रखा है इन्होंने। अब यहां पर क्या है, जो हमारी, मतलब इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, जो निम्नतम वृत्तियां हैं उसमें भी एक दिव्यता का सत्य छिपा है, दिव्यता की शक्ति छिपी है, लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ हैं। वो ट्रैफिकर्स ऑफ द सेंस, वो सेंस के माध्यम से कहते हैं अच्छा थोड़ा ले लो, लेकिन वो जो आता है वो वास्तव में बहुत ही उसका डिस्टॉर्टेड रूप है। अब श्री अरविंद के अगर रिकॉर्ड्स ऑफ योगा पढ़ो तो उसमें एक शब्द आता है, उसका नाम है काम आनंद, शरीर आनंद, मैथुन आनंद। यह आनंद किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, ये व्यक्ति के अंदर स्वतः जागृत हो रहे हैं और उसको अनुभव कर रहा है। इट्स एन एक्सपीरियंस। इवन श्री रामकृष्ण परमहंस इसको पासिंगली मेंशन करते हैं, और जब मैंने पहली बार पढ़ा था उसको पासिंगली, मैंने कहा ये क्या है, ये कैसे संभव है? यही तो तांत्रिक जो लेफ्ट हैंड पाथ के प्रयास कर रहे थे वो गिर पड़े, क्योंकि उनको उसका शेरविंद कहते हैं बोल्ड एफर्ट। तो इस अंधकार में वे चीजें भी जिसको हम कहते हैं कि ये खराब हैं, बुरी हैं, उनके अंदर भी, अब एंगर बुरा है लेकिन एंगर के अंदर क्या छिपा हुआ है? वो रौद्र भाव निकल गया तो वो सृष्टि को बचा सकता है। उसके अंदर वो शक्ति है जो किसी का भी सामना कर ले। किसी भी आप भाव को देख लीजिए, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन इज बैड, लेकिन इसको क्या कहेंगे जब स्वामी विवेकानंद से श्री रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं कि ये लोग ब्रह्म के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या मंतव्य है, और वो कह रहे हैं डिसाइपल देखना ये क्या उत्तर देगा। स्वामी विवेकानंद चुप होते हैं थ्रेशोल्ड पर, फिर कहते हैं आई एम ब्रह्मन, मैं ही ब्रह्म हूं। अब देखिए मैं ही भगवान हूं। लेकिन वो जो पानी वगैरह क्या, नहीं 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 ये सब बेकार की बातें, तू कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बन जा, अफसर बन जा, खूब पैसे कमा ले, यही है बस। तो वो इस चीजों को डाइवर्ट डिस्टॉर्ट कर देते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है। असुर भी ये प्रयास करता है ऐसे कि बाहर से मैं पूरे त्रिलोक अधिपति बन जाऊंगा, सारे ग्रहों को अपने अधीन कर लूंगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन राजा बनने का तो एक ही तरीका है, यूनियन विद द डिवाइन। तब आप राजा नहीं बनते हो, राजा के साथ एक हो जाते हो। तो यहां पर उस प्राइजलेस ट्रेजर कुड हैव सेव्ड द वर्ल्ड, क्योंकि ये वृत्तियां ऊपर नहीं है, ऊपर तो वो स्वयं प्रकाश में स्थित है, लेकिन नीचे जो वृत्तियां हैं उनके अंदर ये सत्य छिपा हुआ है। तो यहां इसीलिए कहा गया है कि जो अभय देता है उसका दर्शन बड़ा भयंकर होता है, उपनिषदों में कहा गया है। देखिए नीचे क्या छिपा है, भय। लेकिन उस भय की अगर हम एक बार उसको कन्फ्रंट कर लें तो अभयंकर के दर्शन होते हैं। तो उसके अंदर पीछे छिपे हैं। शिव जी के पास जाएंगे तो पहले कौन मिलता है, वासुकी नाग। ओ इतना बड़ा फन लेकर के, तो आप पांव छूने जा रहे हैं तो पहले तो आप यही बोलेंगे ना कि शिव जी प्लीज इसको आप थोड़ा कंट्रोल में कर लीजिए। शिव जी तो मगन है ध्यान में, आप डरेंगे उससे तो आप नहीं जा सकते हैं। कृष्ण के गोपाल स्वरूप के पीछे कौन छिपा है, कालोस्मी कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण। तो भय के साथ नहीं, पर उसी भय के साथ अभयंकर जुड़ा हुआ है। उसको जब हम कन्फ्रंट करते हैं तो वो चीजें हमारे अवचेतना में जिससे हम भागते हैं, और वहां भी जो सत्य हैं, जो रात्रि के अंधकार में ड्रैगन पॉज के जहां से कोई नहीं निकाल सकता, वहां भी अश्वपति जाते हैं और वहां भी देखते हैं कि अरे यहां भी वो प्राइजलेस ट्रेजर हैं जिनको हम, जिनसे संसार बचाया जा सकता है। ए डार्कनेस कैरिंग मॉर्निंग इन इट्स ब्रेस्ट लुक्ड फॉर द इटर्नल वाइड रिटर्निंग ग्लीम। उस अंधकार में भी अभीप्सा हो रही है, डिजायर क्या है, उसने एक रूप ऐसा ले लिया है, वास्तव में व्यक्ति क्या खोज रहा है। जैसे एबिस को, अब इसको एक बड़ा सुंदर उपनिषद में कहा गया है, हंगर दैट इज डेथ, जो भूख है वही मृत्यु लाती है। तो अब देखिए शुरू में क्या हंगर होती है, भौतिक चीजों की। सबसे पहले तो भोजन की हंगर होती है, उसके ऊपर आप उठते हैं तो चीजों की, वस्तुओं की हंगर होती है, डिजायर। उसके ऊपर उठते हैं तो महत्वाकांक्षाएं, धन नाम प्रतिष्ठा पद, इसकी हंगर होती है। फिर प्रेम की हंगर होती है। अंत में जाके आप रियलाइज करते हो कि ये हंगर तो इन्फिनिट की हंगर है। तो जिस दिन वो हंगर, जो प्यास, जो भूख है, वो भगवान की प्यास में बदल जाती है, तो बस फिर क्या है, सब कुछ ऊपर से नीचे तक भर जाता है डिवाइन लव की। तो यहां पर उसी की बात है, डार्कनेस कैरिंग मॉर्निंग इन इट्स ब्रेस्ट। आप हंगर को समाप्त कर देंगे तो निष्क्रियता में चला जाएगा व्यक्ति। तो भगवान उसकी हंगर को नर्स करते हैं, एक लंबी यात्रा होती है, अनेकों अनुभव होते हैं, अंत में वो रियलाइज करता है हंगर फॉर द इन्फिनिट। अगर प्रारंभ में बोलें कि ये क्या बात कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो मैं चुपचाप बैठा रहा हूं, तो निष्क्रियता की ओर चला जाता है। अगर बहुत जल्दी कई बार भगवान का विजन खुल जाता है, वो भी समस्या होती है। कई लोगों को लगता है ओ ये तो बड़ा कठिन है, लेकिन वास्तव में कठिन नहीं है। अगर हम एक बार ये समझ लें कि जिसने प्यास जगाई है ना वो पानी भी देगा, एक बार बस ये समझ आ जाए कि प्यास जगाने वाला ही पानी देके संतुष्ट कर सकता है। लेकिन कई लोगों को घबरा जाते हैं, निष्क्रियता इनर्शिया में चला जाता है प्रकृति। तो इसलिए वहां पे, यहां पे उसका वर्णन है, लुक्ड फॉर द इटर्नल वाइड रिटर्निंग ग्लीम। जो सूर्य खो गया था, एक बार एक फ्रेज के रूप में यह बात आई थी, चलो सूर्य को उगाते हैं, सूर्य की खेती करते हैं। कहां है सूर्य, धरती के अंदर बीज रूप में सोया हुआ है, कैसे निकलेगा, धान की बाली के रूप में निकलेगा, वही सूर्य का प्रकाश है। देखिए कब निकलेगा, जब फिर से सूर्य चमकेगा, तो वह सूर्य जो अंदर जाके पोषित कर रहा था बीजों को, वो बाहर प्रस्फुटित होगा, सूर्य और सूर्य का मिलन होगा। वह जो शुद्ध सूर्य अपना निराकार साकार के रूप में है, वही रूपवान होकर के निकलेगा। धान के अंदर, गेहूं के अंदर भी तो सूर्य ही है, उसका अंश है। देखिए कितना सुंदर लगता है ऐसे जब हम देखते हैं इस सृष्टि को, तो वो प्रतीक्षा करते हैं, रिटर्निंग ग्लीम, रिटर्निंग सन, सूर्य फिर से आए, वेटिंग द एडवेंट ऑफ ए लार्जर रे एंड रेस्क्यू ऑफ द लॉस्ट हर्ट्स ऑफ द सन। फिर से ये वैदिक कहानी है, लॉस्ट हर्ट्स ऑफ द सन, ये ग्रीक कहानी भी है। और वैदिक कहानी क्या है, ये कि जो हर्ड्स क्या है, वो फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप, गाय, तो गाय को चुरा करके ले जाते हैं। ये कहानी कई जगहों पे आती है, तो गाय को चुरा करके असुर ले जाते हैं और बंद कर देते हैं अपने अंधकार के क्षेत्र में, गुफाओं में। तो इंद्र पहले भेजते हैं शर्मा को कि देखो इनको बोलो, समझाओ बुझाओ कि दे दे हमारी गाय, हमारा हिस्सा जो है देश का जो टूटा हुआ है उसको वापस करो। तो समझाते हैं, तो वो तो शर्मा को ब्राइब करने लगते हैं, उनकी जो वृत्ति है, हमसे मिल जाओ, हम मिल करके राज करेंगे। तो शर्मा तो इंट्यूशन की देवी हैं, वो तो वापस जाती, इंद्र को बताती हैं यहाँ छिपे हुए हैं। जैसे ही बताती हैं तो ब्रह्मोस चलता है और वो सारी केव्स टूट जाती हैं, और उसके अंदर से फिर ये सारे सांप बिलबिला के निकलते हैं, असुर राक्षस, और उनको इंद्र अपने वज्र के आघात से समाप्त करते हैं। तो ये रेस्क्यू ऑफ द लॉस्ट हर्ट्स ऑफ द सन, तो ये हम सबके अवचेतना के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी छिपी हैं, बहुत सारे शायद पास्ट लाइफ में जब हम श्री राम श्री कृष्ण के साथ घूमे होंगे, निश्चित रूप से रहे होंगे, अरे पत्थर ही रहे होंगे साइड में, कहीं पर पांव रख दिया होगा उन्होंने, गिलहरी रहे होंगे, बंदर भालू रहे होंगे, उन सब की चेतना में जो स्पर्श मिला होगा वो अचानक जागृत हो जाता है, वो सारी केवल स्मृति के रूप में नहीं बल्कि उसके अंदर जो सत्य था, जो गेन किया था हमने, तो वो सब उसका वर्णन है, लॉस्ट हर्ड्स ऑफ द सन इन ए स्प्लेंडेड एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ द वेस्ट ऑफ गॉड, ड्रॉप्ड केयरलेसली इन क्रिएशन स्पेंडथ्रिफ्ट वर्क, लेफ्ट इन द शैंटियर्स ऑफ द बॉटमलेस वर्ल्ड एंड स्टोलन बाय द रॉबर्स ऑफ द डीप द गोल्डन शेकल्स ऑफ द इटर्नल लाई। देखिए वो शेकल्स जो गिनतियां केयरलेसली लुटा दिया भगवान ने, कैसे लुटाया होगा केयरलेसली, उसको कहानी से हम समझें, कृष्ण ने आते जाते किसकी तरफ देखा, कौन मुस्कुराया, कौन सी गोपी प्रसन्न हुई, किसके मन में ईर्ष्या भाव आया, चले गए श्री कृष्ण केयरलेसली लुटा के। अब वो धीरे धीरे पोषित हुआ, भक्ति के रूप में प्रकट हुआ, ना जाने किस जन्म में वही कोई गोपी मीराबाई बन के आई। अब शेरविंद ने तो कैसे लुटाया है, अगर हम देखें शेरविंद माता जी ने तो बिना कुछ पूछे हुए लुटाया है, कोई फिटनेस अनफिटनेस, मदर हैज नॉट आस्ट, नॉट टेकन एनी टेस्ट, लोगों ने स्वीकार किया नहीं स्वीकार किया, वैल्यू किया नहीं वैल्यू किया, लेकिन वो चीजें व्यर्थ नहीं गई हैं, वो जहां पहुंचनी है वहां भी पहुंचेंगी, और जिनको दिया गया उनके अंदर भी वो जागृत होंगी, आज नहीं तो कल। एक बार मुझे ऐसे किसी साधक के घर में झाड़ू लगा करके किसी ने वेस्ट किनारे रख दिया था, उसमें इतने सारे माँ के साइन किए हुए सर्टिफिकेट्स मिले, मेरी अपनी अचानक ध्यान चला गया, पता नहीं क्यों मैं उस कॉरिडोर से अचानक, मैंने कहा इसमें क्या है, तो उसके अंदर इतने सारे मिले हुए थे ऐसे फिके हुए माँ के ओरिजिनल साइन के। तो देखिए ऐसे रॉबर्ट्स ऑफ द डीप, वो जो काम करती थी उसने उसको झाड़ू बुहारू करके कर दिया, उसके लिए सब बराबर कूड़ा कचरा, वो मिस हो जाता वो तो उठा करके कचरे की पेटी में जाता। तो ये सारी चीजें जो भगवान लुटाते हैं धरती के ऊपर, अब हो सकता है उस समय लोग नहीं रिसीव करें, अमृतदा की कहानी है ना, जब माँ फेंक रही है टॉफी, माँ तो बहुत सारे खेल खेलती थी, तो एक खेल था वो टॉफी फेंकती थी और पकड़ दें लोग, तो अमृतदा उसको ऐसे पकड़ देते ऐसे से करके, तो लोगों ने कहा तुमको एक टॉफी भी पकड़नी नहीं आती है क्या अमृत, तो अमृत कहते टॉफी तो मैं पकड़ लूं, लेकिन माँ केवल टॉफी तो फेंक नहीं रही है, वो वो तो टॉफी के साथ ना जाने क्या क्या फेंक रही है, मैं वो सब पकड़ना चाह रहा हूं। सच है, माँ ने तो लुटाया है खजाना। सच ये है कि लोग उसकी वैल्यू नहीं जानते, पर क्या वो वेस्ट है? नहीं, वो अपना काम कर रहा है, जहां है जैसे है आगे जा रहा है और हाथों में जा रहा है, और उनके अंदर भी जिनके पास जिन्होंने उसका स्पर्श भी मिला वो तो एक्टिवेट कर दिया उसने। तो यहां पर उसका वर्णन है, इन ए स्प्लेंडिड एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ द वेस्ट ऑफ गॉड। जब भगवान आते हैं ना खुले दिल से देते हैं, माँ का म्यूजिक देखिए, चित्र माने जैसे दिए हैं, बुक साइन कर करके कल्पना करें हम क्या नहीं, इंटरव्यू टाइम, कोई उनसे पूछता माँ ये तो मूर्ख व्यक्ति इसको आप क्यों दे रहे हैं, ये तो बाहर जा करके कुछ और, माँ विदाउट एनी क्वेश्चनिंग माँ कहती जो मेरे पास आता था मैं उसको बाथ ऑफ द लॉर्ड दे देती थी। इसको कहते हैं खजाना लुटाना, तो एक्स्ट्रावेगेंस। अब कई लोग बोलेंगे कि वो क्या हुआ उन लोगों का, डोंट वरी, अंदर में चला गया है, बीज पड़ गया है, निकलेगा तब जब राइट सीजन आएगा। किसी में सीजन जल्दी आता है, किसी में देर से आता है, कोई भूमि ज़्यादा कड़ी है रॉक लाइक है और कोई भूमि तैयार है। Hoarded from touch and view and thought's desire, locked in blind enters of the ignorant flood, lest men should find them and be even as gods. ये भी एक स्ट्रेटजी है, उन्होंने छिपाया हुआ ये, वो पुराने उसमें आता है ना वेदों को, तो हम वेद पढ़ते हैं जो किताब में लिखे हैं, ओरिजिनल वेद तो मनुष्य के हृदय में छिपाए गए हैं, ढूंढ लो, ढूंढते रह जाओगे। क्योंकि वो इतना पावरफुल, इसकी बड़ी बड़ी कहानी आती है, अभी हनुमान जी के सीरियल में भी वही कहानी आती है कि वो ऐसा ज्ञान है किसी के हाथ में पड़ जाए, असुरों के हाथ में, और असुर प्रयास करते हैं लेकिन उनको उस स्क्रिप्ट को पढ़ना नहीं आता है, तो वो कैसे पढ़ते, रिवर्स करके पढ़ते हैं। मैं कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब हम लोग अगर ऐसे फ्रंट पेज से लास्ट पेज पढ़ेंगे तो असुर उसको लास्ट पेज से फ्रंट पेज पढ़ेगा, हम लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो राइट टू लेफ्ट पढ़ेगा। तो चीज तो है उसके पास लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पा रहा है और उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। तो उसी प्रकार से एक खजाना भगवान ही छिपाते हैं, क्योंकि क्यों, क्योंकि नहीं तो असुरों के हाथ में ये चीज आएगी तो उसका दुरुपयोग करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, ये मंत्र आया था ना रावण के पास, अहम ब्रह्मास्मि, क्या बना दिया उसने अपने आप को, विनाश कर दिया उसका। तो इसीलिए ये चीजों की तैयारी, लेकिन अशुपति के अब अशुपति ये सारी खजाना उनके हाथों में आ रहा है क्योंकि अशुपति तैयार हैं और वहां पहुंच गए हैं। ए विजन लाइटेड ऑन द व्यूलेस हाइट्स, ए विजडम इल्यूमाइंड फ्रॉम द वॉइसलेस डेप्थ्स, ए डीपर इंटरप्रिटेशन ग्रेट इन ट्रूथ, ए ग्रैंड रिवर्सल ऑफ द नाइट एंड डे। अब देखिए यहां पर एक नए प्रकाश में चीजें दिखने लगती हैं। कौन सी चीजें? स्क्रिप्चर्स, ग्रेट एंड ट्रूथ। ग्रेट एंड ट्रूथ कैसे होता है? ट्रूथ तो ट्रूथ है। अब देखिए शेरविंद का इंटरप्रिटेशन पढ़िए, डीपर इंटरप्रिटेशन ग्रेट एंड ट्रूथ। उन्होंने तो इवन पॉलिटिक्स में पूरा वो बताते हैं कि नेशनल लाइफ में तीन स्टेजेस होती हैं और वो श्री कृष्ण के जन्म से उसको जोड़ देते हैं। फिर एक पैराबल है महादेव एंड सती, तो पढ़ी तो सबने है, श्री राम कथा पढ़ी है। कई लोग पूछते हैं कि माता सीता का त्याग क्यों किया, अंत में वो क्यों चली गई भूमि में। भाई पहला त्याग तो ये था कि वो जाके असुर भूमि को चेंज करे, नहीं हुआ। फिर मनुष्यों में चेंज करे, मनुष्य भी तैयार नहीं है, तो माता सीता भूमि जा, भूमि में जाकर वो एक यूनिवर्सल पावर के रूप में स्थापित हो जाती है। अब माँ सीता हर भूमि की संतान के अंदर है और वो सब कुछ सहन करने की शक्ति देती हैं जो उस समय उन्होंने सहन किया। अब ऐसे अगर हम स्क्रिप्चर को पढ़ें तो बड़ा आनंद आता है, और नॉर्मली अगर पढ़ें तो फिर ये प्रश्न आते हैं। तो यहां पर ग्रेटर इंटरप्रिटेशन, तो देखिए वो इंटरप्रिटेशन कैसे वो प्रकट होने लगता है। हुँ. ए विजडम इलूमाइंड फ्रॉम द वॉइसलेस डेप्थ, ए डीपर इंटरप्रिटेशन ग्रेट एंड ट्रूथ. यही हम वेदों के साथ श्री अरविंद का देखते हैं. वेद रहस्य जिसको लोग कई बार स्वीकार नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल तरह से देखना चाहते हैं. ए ग्रैंड रिवर्सल ऑफ द नाइट एंड डे. ये तो लिखी है हमारे भगवद गीता में भी. क्या या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृति संयमी. इसको लोग कहते हैं रात हो गई सो जाओ. ये बाहर की रात की नहीं बात कर, रात को सोना चाहिए लेकिन जिसमें सब लोग सोए हुए हैं, भगवान हाँ हैं, दो मिनट बात करेंगे आप, इंटरेस्ट तो क्या होगा. तो आप जनरल कन्वर्सेशन में कहीं, हम लोग तो बड़े फॉर्चुनेट हैं कि एक देव संघ मिला हुआ है, वरना क्या होता है. हमारे एयरफोर्स में तो मैं जानता हूँ अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर भगवान की बात आपने कर ली लगे पार्टी में तो थोड़ा मुस्कुरा के, अच्छा बाय द वे आज पता है डिनर में क्या मिलने वाला, ये बात वहाँ चली जाएगी तो बात निकलेगी तो दूर तक रख जाएगी, तो चुप रहो अपना जो भगवान के साथ प्यार है उसको अपने तक रखो. वो महसूस होता है कि थोड़ा पागल है ये लेकिन उसको तो ये क्यों है, क्योंकि ये मनुष्यों के लिए वो रात है. वो सोचते हैं तो बेकार की चीजें हैं, और वह जो मनुष्यों के लिए दिन है, जो योगी है वो कहता है हे प्रभु इस महाअंधकार में जी रहे हैं ये शहर में रहने वाले लोग, इसी में रत हैं, इन्हीं कामनाओं वासनाओं को जीवन समझते हैं. छोटे नारायण जी ने वो कहानी ना, एक सेठ जी ने उनको हायर किया, हायर नहीं किया, बोला आप तो बहुत अच्छे लेखक हैं, थोड़ा हमारी आत्मकथा कृपया लिख दीजिए. वो तो ज्यादा पकड़ जैसे थे, किसी घर जाके ठहर गए तो वहां 15 दिन रुक गए, 1 महीना रुक गया, उनको कोई चीज से बंधे नहीं थे, कोई कायदा कानून ना आश्रम का भी नियम उनको नहीं बात, क्यों उनको माता जी ने कहा था ही इज रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑन शिवबिंदो लेट हिम कंटिन्यू, तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता है. तो सेठ जी उन्होंने 15 दिन बाद पूछा कुछ लिखा आपने, कहते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा लिखा है, और बहुत ही फ्रैंक. सो उन्होंने कहा थोड़ा सुनाइए, बड़े डर के कि अब कुछ उनकी वाणी में जब मेरी प्रशंसा होगी. तो छोटे नारायण ने शुरू किया, एक कीड़ा था बहुत बड़े महल में रहता था 4-5 कहते आप ही किसके बारे में लिख रहे हैं, कहा किसके बारे में लिख रहा हूं आप ही तो बोले थे कि आपकी आत्मकथा लिखूं, आपकी कथा में है क्या जो मैं लिखूं, यही कि आपने महल बनाया खूब पैसे कमाए, कौन बनेगा करोड़पति खेला तो बच्चे पैदा किए उनको खूब हार्वर्ड भेजा, ये कोई कहानी है, पशुओं की भी यही कहानी है, थोड़ा आपकी डिग्री अलग हो गई. देखिए नाइट लोग कितना मजा लेते हैं इसमें, मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ लिख के पता नहीं क्या बन गया, तो ये जो एटलांटा चला गया लेकिन वहां से हमको नहीं मानता, भगवान किसी और को मानता है, उसको मानना तो हमको चाहिए भगवान. अब ये देखिए ये इसको लोग ग्रैंड रिवर्सल ऑफ द नाइट है, वैल्यूज बदल जाती हैं. तभी तो बुद्ध क्या कहते हैं कि संसार में यूनिवर्सल पीड़ा क्यों है. कोई बुद्ध जी से पूछता आपको किसने कहा पीड़ा, हम तो बड़े मजे में हैं, हम देखिए ना हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हमारी वाइफ बहुत हमारी सेवा करती है. वो अलग बात है कि करती हो ना करती हो, कहता है आदमी, या हमारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, वो अलग बात है कि वो दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, घर में कलह क्लेश होता है. अब ये वो लोग तो इसी को समझते ना सुख, हम तो सुखी हैं, और बुद्ध क्या कह रहे हैं, घोर पीड़ा में अंधकार में व्यक्ति रह रहा है. दिस इज द ग्रैंड रिवर्सल ऑफ द डे एंड नाइट, नाइट एंड डे. ऑल द वर्ल्ड्स वैल्यूज चेंज्ड हाइटनिंग लाइफ्स एम. सारी वो वैल्यू जिनको लोग बहुत वैल्यू दे रहे थे उसकी मूल्य समाप्त हो गया. ए वाइजर वर्ड ए लार्जर थॉट केम इन देन व्हाट द स्लो लेबर ऑफ ह्यूमन माइंड कैन ब्रिंग. इस बात को मानव मन कोई एनालिसिस से नहीं समझ सकता, ये तो ऊपर से टपकता है प्रकाश की तरह, तब आपको दिखने लगता है. अरे उसको कोई लॉजिक से नहीं समझ सकते. लोग पूछते हैं अच्छा काम क्यों छोड़ा, नौकरी छोड़ दी तो ये क्यों कर रहे हो, और एक नौकरी, यहां भी लोगों ने मुझे बताया कि भाई यहां क्यों नहीं कर लेते हो, यहां तो 3 लाख 4 लाख मिल जाए। मैंने कहा यही करना था तुम्हें, एयरफोर्स में तो बहुत अच्छा था, वहां तो पैसे थोड़े कम मिलेंगे लेकिन मान प्रतिष्ठा मिलती है, तो यहां आके अगर यही करना है, लोग पूछते हैं, हर तरह के आपके पास टेम्पटेशन आएंगे, क्योंकि उनको यही लगता है कि यही अल्टीमेट ट्रूथ है, तो उनको ब्लेम नहीं कर सकते, वो तैयार नहीं है, तो थॉट लेबर करके इसको नहीं जान सकता, क्योंकि लोग बाहर से देखते हैं। अगर आप बोलो हम आश्रम में चले गए तो लोगों को लगता है अच्छा आश्रम में क्या मिलता होगा, तो आप बोलोगे हम छोटे से कमरे में रहते हैं, अच्छा हस्बैंड वाइफ भी अलग अलग रहते हैं तो और उनको समस्या, फिर अंत में उनको लगता है कुछ तो मिलता, कोई तनख्वाह उनका मिलती नहीं, तनख्वाह भी नहीं मिलती है, शांति मिलती होगी उनको, भैया हमको तो अलग तरह का आनंद मिलता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वो वाली शांति नहीं जो आप चुपचाप बैठ के शांति समझते हो तो हमको तो युद्ध मिलता है और युद्ध में शांति मिलती है। तो एनीवेज, तो ये सारी चीजें अष्टपति के अंदर, ए लार्जर थॉट, ए वाइजर वर्ड, ए लार्जर थॉट केम इन देन व्हाट द स्लो लेबर ऑफ ह्यूमन माइंड कैन ब्रिंग, ए सीक्रेट सेंस एवोक दैट कुड परसीव ए प्रेजेंस एंड ए ग्रेटनेस एवरीवेयर। लोग कहते कहाँ है भगवान, मेरा सब छीन गया, और जो योगी हो क्या कहे यहां है भगवान, उसी ने छीना है बोलेंगे ऐसा वाला भगवान नहीं चाहिए सच है, यही तो अंतर है। वो जो रानी से दासी ने कहा हे रानी बहुत उल्टा पुल्टा हो गया आपका शीशा, जो आप चीन से लाई थी वो टूट गया, बड़े डर के कह रही है कि मेरा सिर कलम हो जाएगा कट जाएगा, रानी भारतवर्ष के स्पर्श में आके ईरान की रानी, वो थोड़ा इंडियन टच मिल गया था, योग की तरफ मुड़ गई थी, कहती अच्छा हुआ एक्चुअली, रोज ये मुझे झूठ बोलता था, मैं इसमें जब देखती थी स्वयं को तो मैं कहती थी मैं कितनी सुंदर हूं, शीशा तो वही प्रतिध्वनित कर रहा था, ये झूठा चला गया, अच्छा हुआ खूब शुद्ध, आई ना शिकस्त सामान्य खुद भी नहीं शिकस्त। वो आके कहती है अरबी में, कहती है रानी बेगम शीशाए चीन शिकस्त, चीन का शीशा टूट गया, तो बेगम कहती है खूब शुद्ध बहुत अच्छा हुआ, सामाने खुद भी नहीं शिकस्त, खुद को निहारने का जो सामान था टूट गया अच्छा हुआ। तो बोला है ना किसी और, भला हुआ मेरी गगरी टूटी मैं पन्यावरण से छूटी रही भला हुआ मेरी गगरी फूटी मैं पन्यावरण से छूटी रही रे, जो लेबर है जिसमें हम लगे रहते हैं तो उससे प्रेजेंस एंड ग्रेटनेस एवरीवेयर। यही शेरविन दर्शन करते ना झील के अंदर, वासुदेवम सर्वमिति, द यूनिवर्स वॉज नॉट नाउ दिस सेंसलेस वर्ल्ड बोन राउंड इनर्ट ऑन एन इमेंस मशीन। ये देखिए गीता की भाषा है, गीता क्या कहती है, जब ज्ञान में व्यक्ति रहता है तो वो मशीन की तरह उसका यंत्रवत जीवन चलता है, और कौन चला रहा है, लेकिन चला श्री कृष्ण है, तो कहते हैं सबके हृदय में स्थित माउंटिंग ऑन द व्हील ऑफ इग्नोरेंस पीपल आर मूविंग, और क्या कहते हैं यंत्रारूढ़िणी माया, वो उसको यंत्र वो व्हील पर चल रहा है लेकिन मक्खी जो व्हील पर बैठी है उसको लग रहा है मैं चला रही हूं इस चक्के को और कितनी दूर आगे जा रही हूं, फिर क्रश हो जाती है तो कहती है अरे मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे में तो इतनी शक्ति थी, उसको पता नहीं है व्हील कोई और चला रहा है, तो उसके ऊपर केवल बैठी है उसकी गति में जा रही है। तो यहां सृष्टि का एक अर्थ समझ आने लगता है, इट कास्ट अवे इट्स ग्रैंडियोज लाइफलेस फ्रंट, लाइफलेस फ्रंट ग्रैंडियोज जड़ प्रकृति, कोई भी चीज जिसमें जीवित ना हो, ए मैकेनिज्म नो मोर और वर्क ऑफ चांस बट ए लिविंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ गॉड। तो ये यहां श्री कृष्ण की इस बात को पूर्ण करते हैं शेरविन, ये बहुत अद्भुत है क्योंकि श्री कृष्ण इसको ऐसे ही बताते हैं। मुझे याद है कि जब मैंने ये लाइन पढ़ी थी मुझे भी थोड़ी समस्या हुई थी, मैंने कहा ये क्या बात है, वो कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान होकर के यंत्रारूढ़िणी माया मेरी माया रूपी यंत्र पर बिठा करके घुमा रहा हूं, भाई क्यों कर रहे हो आप ऐसा हमको, पर जब ज्ञान आता है तो लगता है वो केवल ऐसा नहीं है, वही घूम रहे हैं, वही व्हील भी हैं, वही हमारे साथ हैं और ये हमको आगे ले जा रही है बहुत आगे। तो वो लाइफलेस मूवमेंट नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि चांस है, फेट है, लेकिन फेट इज द वर्क ऑफ एन ऑल सीइंग विल। ए स्पिरिट हिड इन फोर्सेस एंड इन फॉर्म्स, हर चीज के अंदर एक भगवान की दिव्यता भव्यता शक्ति छिपी है। वॉज द स्पेक्टेटर ऑफ द मोबाइल सीन, द ब्यूटी एंड द सीजलेस मिरेकल लिट इन ए ग्लो ऑफ द अनमैनिफेस्ट, द फॉर्मलेस एवर लास्टिंग मूव्ड इन इट। ये सारी जो गति है, ये देखिए ईश उपनिषद का वाक्य शिरविंद अपने अंदाज में कह रहे हैं, ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अब वो क्या कह रहे हैं, ये जगत्याम जगत भी मैं ही हूं, ये जो मूवमेंट है वो भी भगवान है, दिव्य है, देह दृष्टा भी है, सृष्टा भी है, शांति भी है और गति भी है, विश्राम भी है, युद्ध भी है। अंतिम चार पांच पंक्तियां, सीकिंग इट्स ओन परफेक्ट फॉर्म इन सोल्स एंड थिंग्स। क्यों हो रही है ये गति, इस गति के माध्यम से कुछ क्रिएट हो रहा है, स्वयं कोई भगवान संसार में ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। हम सब उन्हीं का सीमित रूप है, लेकिन उनकी जो प्लान है हम सबको वही, अपने आप को वह जो अरूप है हम सब के अंदर रूपवान बनता है, वह जो अनाम है हम सब के अंदर नाम धारण करता है, वो जो गुणातीत है हम सब के अंदर अपने गुणों को अभिव्यक्त करता है। यहां पर उसका वर्णन है, सीकिंग इट्स ओन परफेक्ट फॉर्म इन सोल्स एंड थिंग्स। भाई हमको पसंद आए या ना पसंद आए, बात ये हो रही है, बेटर वी एक्सेप्ट एंड नो। एंड देखा जाए तो कितनी सुंदर बात है, ठीक है पैसेज लंबा है, लेकिन शेरविंद कह रहे हैं कि इसको छोटा कर सकते हो, पर वो हम नहीं चाहते, हम चाहते कि हम इनर्ट बैठे रहेंगे और अपने आप मैजिक हो जाए। लाइफ केप्ट नो मोर ए डल एंड मीनिंगलेस शेप। अरे ये क्या जीवन है, चलता जा रहा है ऐसे, इससे तो नहीं अच्छा, ऐसा नहीं है। हर दिन हर रोज सुबह एक नई आशा एक नई संभावना लेकर के प्रकट होती है। इन द स्ट्रगल एंड अपहीवल ऑफ द वर्ल्ड ही सॉ द लेबर ऑफ ए गॉड हेड्स बर्थ, अर्थ पेन्स वेर द रैंसम ऑफ इट्स प्रेजेंट डिलाइट। वो जो पीड़ा होती है धरती के अंदर अवतार के आने के पूर्व, या अवतार जब धरती पर रहते हैं, यहाँ दो विश्व युद्ध हो गए, वो पीड़ा अभी भी हम देखते हैं, जो रेस्टलेसनेस छटपटाहट वास्तव में किसकी है, जन्म देने की, वो प्रसव पीड़ा है एक नए नव जन्म की, चेतना के नव जन्म की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम या तो भगवान को कोसते हैं प्रसव पीड़ा से, या तो इनर्शिया में चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो स्ट्रगल के पीछे क्या है, एक नवजात दिव्य शिशु को जन्म देने की का प्रयास है। ए सीक्रेट नॉलेज मास्क्ड एज इग्नोरेंस। हमको ये ज्ञान लगता है, लेकिन अज्ञान के पीछे ज्ञान छिपा है, इसीलिए आशा है। वेदों में दिति और अदिति की कहानी है, ये इसी से, दिति के संतानें और अदिति, ये समय का भाव है, इस कहानी में मैं नहीं जा रहा हूं। बहुत सुंदर कहानी है कि दिति की जब संतान होती है तो इंद्र वज्र के द्वारा उनको 49 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लोगों को समझ नहीं आती कि इंद्र कर क्या रहे हैं, बट इज अ ट्रूथ बिहाइंड दिस स्टोरी। एनीवेज, ए सीक्रेट नॉलेज मास्क्ड एज इग्नोरेंस, फेट कवर्ड विद एन अनसीन नेसेसिटी, द गेम ऑफ चांस ऑफ एन ओमनीपोटेंट विल। हमको ये चीजें चांस फेट कर्मा ना जाने क्या क्या, बड़े दुख से लोग कहते हैं तुम्हारे कर्म होंगे, अरे भाई ओरिजिनल कर्म भगवान का है और वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा संभावना दे करके भेजते हैं, और उसके साथ साथ उतनी बड़ी ग्रेस। तो ये सब जो हमको अभी नहीं समझ आता है ज्ञान में, हमको ये अंधकार लगता है, हम इसमें छटपटाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, भागना चाहते हैं। अब अशुपति क्या देख रहे हैं, इसके अंदर तो दिव्य शिशु के जन्म की प्रसव पीड़ा है। माँ इसको लिखते अपनी जापान की एक टॉक है, नेचर इज सो रेस्टलेस। क्यों, रेस्टलेसनेस के अंदर वो कुछ और जन्म देना चाह रही है। अब ये प्रयास कितना समय लगेगा, आफ्टर ऑल नव सृष्टि की ये प्रसव पीड़ा है, ये 9 महीने में तो नहीं होगी, लेकिन 9 जन्मों की जरूरत नहीं है, 900 साल या 90 साल में हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ जय माँ।